नमस्कार मित्रों, तृतीय वर्ष बीए उर्दू शिक्षण क्रम में हम URD 465 अवामी अदब ये कोर्स पढ़ रहे हैं और उसके जो किताब प्रिस्क्राइब की हुई है वो है उर्दू शायरी का तनकीदी मुताला। आज शायरी और गज़ल, ये जो उर्दू साहित्य के बहुत बड़े एक प्रकार है या जिसका संबंध उर्दू शायरी में ज़्यादा से ज़्यादा आता है, उसके बारे में हम पढ़ाई करने वाले हैं। हमको ये जानकारी देने के लिए डॉक्टर सैयद जाकिर अली साहब, जिनसे पिछली बार भी अपनी बात हुई थी, वो आए हुए हैं। और सैयद साहब का गज़ल और कसीदा के बारे में उनको ज़्यादा दिलचस्पी है और वो जैसे मैं बात कर रहा हूँ सुबह से उनके साथ, तो ऐसे शेर और गज़ल सर ने मुझे सुनाए कि मैं तो बिल्कुल ये गज़ल के प्यार में पड़ गया। तो मैं अभी बातचीत शुरू करता हूँ सैयद जाकिर साहब से, और मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि ये आप ध्यानपूर्वक सुनिए, पूरा ध्यान देते हुए सुनिए, क्योंकि उर्दू और गज़ल का जो नाता है वो नाता अपने भी दिल में आप इतना पक्का करो कि ये जो गज़ल है वो आपके दिलो दिमाग तक छा जाएगी। नमस्कार सैयद सर।
नमस्ते सर,
मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे स्टूडियो में।
शुक्रिया सर।
और ये जो अवामी अदब हमारा जो कोर्स है
जी,
उसमें गज़ल और कसीदा के और भी कुछ टॉपिक है, लेकिन हम पहले गज़ल से बात करेंगे।
जी जी।
तो गज़ल यानि क्या, क्योंकि हम हर दिन कोई गाना सुनते या गीत सुनते, हम कहते ये गज़ल है, और उर्दू और गज़ल का जो नाता है
जी,
वो नाता काफ़ी पुराना है। और लेकिन गज़ल किसे कहते हैं ये हमको पता नहीं है, हम हमारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में जरा ज़्यादा जानकारी दें।
देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि उर्दू में शायरी की बहुत सारी किस्में हैं। कसीदा है, मरसिया, मसनवी, नात, हमद वगैरह वगैरह बहुत सारी किस्में हैं, नज्म वगैरह। उसी में से एक किस्म जो है वो गज़ल है।
अच्छा।
ये इतनी ज़्यादा, असल में इसके जो मानी होते हैं, जो डिक्शनरी में अगर आप उर्दू डिक्शनरी जिसको लुगत कहते हैं, अगर इसमें आप इसके मानी तलाश करेंगे तो इसके माने निकले हैं महबूब से लगावट की, मोहब्बत की बात करना। हालांकि ये मानी जो है बहुत पुराने हैं, ये किसी ज़माने में कहे जाते थे कि गज़ल यानि एक ऐसी सिन्फ़ शायरी, शायरी का एक ऐसी किस्म जिसमें महबूब से प्यार मोहब्बत की बातें की जाएं, गिले शिकवे किए जाएं, उसके हुस्न की तारीफ बयान की जाए वगैरह वगैरह। लेकिन सही मानों में आज अगर गज़ल को आज के इस माहौल में रखकर देखें तो गज़ल की ये तारीफ जो उसको जिस तरह से इसकी डेफिनेशन है ये बिल्कुल बहुत पीछे रह जाती है। यानी वो आज शायर की ज़ात का गम नहीं रहा गज़ल, बल्कि पूरी कायनात, पूरी दुनिया का गम हो गया उसमें। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गज़ल के मानी के एतबार से गज़ल एक ऐसी सिन्फ शायरी कि जिसमें महबूब से बातें की जाती हैं और उससे गिले शिकवे किए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी आज हमारे पास गज़ल में बहुत कुछ समाया हुआ है।
सर, अभी आपने जो जिक्र किया कि गज़ल और मोहब्बत में जो रिश्ता है
जी,
उसके बारे में आपने बताया, लेकिन ऐसे कई गज़लकार हैं कि जो बहुत फेमस हुए हैं उर्दू में, उनका बड़ा नाम है
जी,
उनका दबदबा है, तो ऐसे कौन कौन से नाम आप लेना चाहोगे कि जिनके गज़ल को आज भी बहुत लोग प्यार करते हैं या सुनते हैं या पढ़ते हैं?
देखिए, इसमें शायर जो हमारे बहुत पुराने जिन्होंने गज़ल की बुनियादें रखी, उनमें मीर तकी मीर, जिनको खुदाए सुखन कहा जाता है,
खुदाए
सुखन, सुखन यानी कलाम शेर,
कलाम शेर। अच्छा,
तो ऐसा एक शायर कि जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा इतनी ऐसी इस तरह की शायरी की कि उसके बाद बड़े बड़े शायर पैदा हुए, लेकिन उसके मेयार को, उसके स्टैंडर्ड को कोई छू नहीं सका। तो वो मीर तकी मीर हैं। वैसे बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं, इसके बाद में गालिब हैं, मोमिन हैं, दाग हैं, हसरत हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मीर गालिब का नाम आज मैं समझता हूँ कि शायद ही ऐसा कोई शख्स हो जिसने, जिसको उर्दू गज़ल से दिलचस्पी हो और उसने मीर या गालिब का नाम ना सुना हो।
सर, जब भी हम गज़ल सुनते हैं
जी,
तब हमारे दिल से वाह वाह या आह निकलती है, तो गज़ल में ऐसी क्या जादू रहती है कि वो सुनने वालों के मुंह से ऐसी आवाज़ें आती है कि क्या बात है, वाह वाह, ओहो, यानी जब दुख का जिक्र होता है तो ओह आ जाती है, और जब कुछ बहुत ऊंची बात करते हैं तो आह आती है। तो इस शब्दों में, इस रचना में ऐसा क्या हुआ है, ऐसे क्या करते हैं कि जिसके कारण सुनने वाला बिल्कुल उसमें मशरूफ हो जाता है, बिल्कुल यानी वो बाकी किस तरफ उसका ध्यान नहीं जाता है, ऐसा क्या कारण है?
देखिए, गज़ल सबसे बहुत अच्छी बात सर आपने की कि गज़ल जो है वो दरअसल दिल से उठने वाली आवाज़ का नाम है। इसीलिए शायर कहता ना कि मैं तो गज़ल सुना के अकेला खड़ा रहा, मैं तो गज़ल सुना के अकेला खड़ा रहा और लोग अपने अपने चाहने वालों में खो गए।
क्या,
क्योंकि कहानी मेरी रुदादे जहां मालूम होती है, जो सुनता है उसी की दास्तां मालूम होती है।
क्या,
जो कुछ भी गज़ल में पेश किया जाता है वो उसका एक अंदाज ऐसा अछूता होता है, इतना दिल को छू लेने वाला होता है कि आप, हम जिस तरह बात करते हैं वही बात को शायर अगर अपने अंदाज में गज़ल के शेर के साथ में अगर वो पेश करता है, गज़ल के शेर के जरिए अगर पेश करता है, तो उसका अपना अंदाज जो है वो बहुत जुदा हो सकता है और बहुत दिल को छू लेने वाला होता है। जैसे मैंने, हालांकि आमतौर पर सर आपने भी सुना होगा कि कुछ लोगों का ये मानना है कि गज़ल में सिर्फ इश्क मोहब्बत और इसकी बातें ही होती हैं, लेकिन दरअसल गज़ल इससे बहुत ऊंची उठकर गज़ल का शायर आज हमारे दिल की बात जो है वो दुनिया तक पहुंचाता है। और इसीलिए जब वो दिल हमारे दिल में जो होती है वो जब किसी और की ज़बान से हम सुनते हैं तो बेसाख्ता हमारी ज़बान से आ और वाह निकलना शुरू हो जाती है।
सर, अभी जैसे आपने कहा कि गज़ल में ये जो ताकत है, अभी देखिए कि शायर या गज़लकार जो लिखता है
जी,
वो तो उसकी अपनी कहानी है, फिर भी वो बयान करने का जो तरीका है वो तरीका उसकी नहीं बल्कि मेरी या आपको अपनी कहानी लगती है, तो वो शब्द का जो इस्तेमाल करना रहता है, तो पहले चरण में कितने शब्द आए, दूसरे में कितने आए, और जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो आए, तो ऐसी कौन सी शक्ति का या प्रयोग शायर लोग करते हैं कि जिसके कारण उनका दुख अपने को अपना लगता है या आप बीती लगती है?
देखिए सर, असल में बात यहाँ पर जो हम करते हैं, बात वही रहती है जो आप सुनना चाहते हैं या मैं कहना चाहता हूँ, बात में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। जो दर्द तुम्हारे हैं अपने भी वही गम हैं।
क्या,
जो दर्द तुम्हारे हैं अपने भी वही गम हैं, अब आओ गले मिल लो, जो तुम हो वही हम हैं।
क्या,
तो बात वही है सर, लेकिन उसको कहने का अंदाज थोड़ा सा शायर का अलग होता है। शायर जो है लफ्ज़ों की एक ऐसी माला पिरोता है उसकी, जैसे के उसमें से फेर बदल की रत्ती बराबर गुंजाइश नहीं होती।
क्या,
अगर वही बात को, जैसे मिसाल के तौर पर सर, अगर एक बच्चा, छोटा बच्चा जो है वो मर गया है और जो खेलता हंसता बच्चा था, अब वो बच्चे को अगर आप देखें और आपके पता चले कि ये बच्चे का इंतकाल हो गया है, वो इस दुनिया से जा चुका है, तो आप अफसोस जाहिर करेंगे कि अरे कितना बुरा हुआ, कितना अच्छा बच्चा था, अभी और कुछ दिन जी लेता, कुछ और दुनिया देख लेता। तो यही बात को अगर शायर कहता है तो उसका अपना एक अंदाज बदल जाता है।
बराबर
लेकिन और ये अंदाज अंदाज की बात होती है, और फिर दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है, दिल से निकलने वाली बात होती है। शायर जो कुछ भी कहता है उस वक्त तक नहीं कहता जब तक के उसको अंदर से, उसके अंदर की आवाज शेर बनकर लफ्जों में ढल नहीं जाती उस वक्त तक के शायर। वरना आप कहिए कि भाई जरा इस पर एक शेर कह दीजिए, शायर कभी नहीं शेर कहेगा, क्योंकि उसके लिए खास मौका होता है, एक खास मूड होता है। उस मूड के बनने के बाद आप उसको रोकेंगे भी तो वो नहीं रुकेगा।
सर, अभी आपने जो नाम बताए मशहूर शायरों के, गजलकारों के,
जी
तो जैसे कि आपने कहा कि वो दिल से जब तक आवाज नहीं निकलती तब तक नहीं बनता है, लेकिन इसका मतलब ये एक ये भी है कि जो सामान्य लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका जो दर्द है वो दर्द जब तक शायर खुद सह नहीं सकता और जिसने सहा नहीं उसकी कलम से वो दर्द निकलेगा नहीं
सही
गजल
बात है,
के
बिल्कुल
माध्यम
सही।
से। तो आपने जितने नाम बताए अभी मुझे या हमारे
जी
स्टूडेंट्स को, तो उन्होंने क्या अपने जिंदगी में बहुत दुख दर्द देखे हैं कि उसका एक कारण है कि वो बहुत बड़े गजलकार बन गए, अच्छे शायर बन गए?
हाँ सर, देखिए इसमें एक बात ये तो बराबर है कि एक जिंदगी में एक तरीका ये होता है कि इंसान पर बीते तब उसको एहसास हो, लेकिन एक तरीका ये भी होता है कि वो दूसरे को देखे और उसका दिल तड़प उठे। खंजर लगे किसी को, तड़पते हैं हम यहाँ, सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर में है।
क्या बात है,
तो जब तक आप किसी की तड़प को महसूस नहीं करेंगे, होता है कई शोरा पर बीती, जैसे मीर तकी मीर के बारे में आपसे मैं बताता चलूँ, मीर तकी मीर जिनको खुदाए सुखन अभी हमने बात की,
बराबर
और वो खुद भी इस बात को मानते हैं कि यानी मुझको शायर ना कहो मीर के साहब मैंने, मुझको शायर ना कहो मीर के साहब मैंने, रंजो गम कितने किए जमा तो दीवान हुआ। तो ये एक जमाने में जब वो दिल्ली से लखनऊ गए, क्योंकि दिल्ली उजड़ रही थी, दिल्ली में जो जिस
दंगे
तरह के लूटपाट चल रही थी, तो बहुत सारे दिल्ली के शायर और फनकार, कोई दिल्ली गया, कोई रामपुर गया, कोई लखनऊ गया, कोई कलकत्ता गया, जिसका जहाँ जहाँ लगा जिसको, तो मीर तकी मीर जो शायर, तो इन्होंने लखनऊ का रुख किया, क्योंकि लखनऊ में उस वक्त नवाबी दौर दौरा था, नवाबों का मामला था। तो उस वक्त जब ये गए तो इनकी हालत ऐसी थी कि फटे हुए कपड़े और धूल मिट्टी में सब अटा हुआ, और इत्तेफाक से उनको ये मालूम हुआ कि यहाँ एक मुशायरा है, तो वहां पहुंच गए। इनको जब लोगों ने देखा तो उनको देखकर हंसने लगे। वहां पर बड़े खुशबाश लोग थे, अच्छे रहन सहन वाले लोग थे, तो इनको देखकर हंसने लगे। पूछा कौन है ये? तो कहा शायर है। ओ शायर है, ठीक है, बोले फिर आइए अपना कलाम सुनाइए। फिर और भी लोगों ने मजाक बनाना शुरू किया, तो बेसाख्ता उनकी जबान से क्या निकलता है कि क्या बूदो, यहाँ तो कोई कहता है कि कहाँ से आए हैं, किधर से आ गया, क्या ऐसे कमेंट्स पास करने लगे। तो कहते हैं क्या बूदो बाश पूछो हो पूरब के साकिनों, बूदो बाश रहन सहन,
बराबर
क्या बूदो बात बूदो बाश पूछो हो पूरब के साकिनों, हमको गरीब जान के हंस हंस पुकार के, दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखब ही जहां रोजगार के, उसको फलक ने लूट के वीरान कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के।
क्या बात,
तो सब सत्ताधारी हो गया उन पर कि इसने तो बरवक्त ऐसे इस किस्म के शेर का,
शेर
तो ये उन पे बीती है।
बराबर
उन्होंने जो इश्क की कैफियत बयान की, जो महबूब के हाल चाल बयान किए, वो सारी देख तो दिल के जहां से उठता है, ये धुआं सा कहां से उठता है, और बैठने कौन दे है फिर उसको
क्या
जो तेरे आस्था से उठता है,
क्या
और यूं उठे आह उस गली से हम जैसे कोई जहां से उठता है।
क्या
ये मीर तकी मीर का अंदाज था। ये सारी तो उनको तो ऐसा महसूस होता था, वो लोग कहते हैं कि वो दीवाने हो गए थे। वो खुद कहते हैं कि मेरे पर एक कैफियत ऐसी तारी होती थी, जब चांद निकलता था तो एक परी आती थी मेरे सामने और मैं उसको देखता रहता था। तो वो परी को हासिल करने के फिराक में वो दीवाने रहते थे। तो ये क्या चीज़ है, किसी चीज़ का हद से बढ़ जाना। तो ये एहसासात थे उनके असल में, जो बहुत ज़्यादा अपने दिलो दिमाग पर सवार थे। और जब तक दिलो दिमाग पर कोई चीज़ सवार नहीं हो जाती तो वो शायरी के अंदर मज़ा नहीं दे सकती।
तो खुद का दर्द से रिश्ता होना
बहुत ज़रूरी है,
और दूसरों के प्रति प्यार होना, ये शायर के लिए या गज़लकार के लिए
जी बिल्कुल
बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपने बताया, बहुत सही बात कही आपने। गज़ल के शायर में जैसे कि आपने कहा शुरुआत में कि मोहब्बत, दिल, दिल की दुनिया, इससे बड़ा ताल्लुक है।
जी
लेकिन ऐसी कई भावनाएं हैं कि जो उतनी भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जितनी मोहब्बत है, प्यार है,
जी
दिल है। जैसे कि वतन के लिए अपना प्यार,
जी
देश प्रेम, अपने
जी
समाज के लिए प्यार,
जी जी
तो क्या इसका जिक्र गजल में आया है या खाली दिल और मोहब्बत की बातें चलती है गजल में?
नहीं सर, देखिए इसमें जिंदगी के सारे तजुर्बात का असल में जो गुलदस्ता है,
अच्छा हाँ, गुलदस्ता, सही बात है,
ये गुलदस्ता है,
सही बात है।
इसमें आपको हर वो चीज़ मिलेगी जिसका ताल्लुक हमारी हकीकी सच्ची ज़िंदगी से होता है। जैसे हुब्बुल वतनी की बात आपने की, मैं आपको एक ये सुनाता हूँ कि आंधियों के जब ये उस वक्त का शेर है, या उस सिचुएशन को सामने रखिए जब लोग कहते हैं कि भाई ये मुसलमानों के लिए पाकिस्तान और हमारे लिए हिंदुस्तान, तो वो कुछ बहुत तो ऐसे लोगों के लिए उसमें शायर शेर कहता है कि आंधियों के डर से हमने आज गुलसिता छोड़ा नहीं।
क्या
क्या हालत थी हिंदुस्तान में जब बंटवारा हुआ था, आप
बराबर,
आंधियों के डर से हमने गुलसिता छोड़ा नहीं, बिजलियों के खौफ से भी आशियां छोड़ा नहीं। इम्तिहान अब और क्या देगा कोई मेरी तरह, जान तो दे दी मगर हिंदुस्तान छोड़ा नहीं।
क्या बात है, क्या बात।
तो ये चीज़ जो है ये हमारे यहाँ पर, अभी अल्लामा इकबाल को देख लीजिए आप, उनका तराना जो है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा।
क्या
तो आपको बहुत सारे तरीक़ों से कहीं ना कहीं हर एक शायर के यहाँ, किसी के यहाँ कम है, किसी के यहाँ ज़्यादा है, हसब ज़रूरत इंसान, लेकिन देश प्रेम, प्यार, मोहब्बत, भाईचारगी, जो दंगे फिसाद होते हैं उसको भी सामने रखकर कहा कि दुनिया में अमनो प्यार के किस्से लिखेगा कौन, दुनिया में अमनो प्यार के किस्से लिखेगा कौन, आपस में कट मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन,
क्या बात,
होगे ना तुम तो लाएंगे तुम सा कहां से हम,
क्या,
और होंगे ना हम तो आपको भैया कहेगा कौन,
कौन, क्या।
तो ये चीज जो है वो हमारी उर्दू शायरी की सबसे बड़ी देन है कि चाहे वो हुब्बुल वतन ही हो, चाहे आपस में भाईचारगी का मामला हो, तमाम चीज़ें, उसके अलावा हमारे यहाँ सियासत है, हमारे यहाँ ज़िंदगी के तजुर्बात, उर्दू गज़ल वो चीज़ है जो सबको समेट कर अपने साथ लेकर चलती है।
सर आपने बहुत अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया, गुलदस्ता।
जी,
और ये गुलदस्ता वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है हर एक के, अगर आप ये गुलदस्ता साथ लेकर जाओगे दिल में रखकर, तो ये पूरी भावनाएं आपकी एक हो जाएगी। सर जैसे कि आपने मोमिन जी का जिक्र किया था,
जी जी
और मैंने ऐसा सुना है कि गालिब साहब ने भी उनके शेरों का बहुत बड़ी तारीफ की थी,
जी
तो
जी
वो उसके बारे में जरा बताइए हमें।
देखिए मोमिन का मामला जो है वो नाजुक ख्याली से बहुत ज़्यादा रहा है, और मोमिन चूंकि एक बहुत बड़े शायर थे और ये गालिब ही के ज़माने में थे, उन्होंने उस ज़माने में जिस में आप ये कहा आपने अभी फरमाया सर के उन्होंने غالب ان سے زیادہ بہت زیادہ متاثر تھے. انہوں نے کہا تھا کہ تم جب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اب یہ دیکھیے وہ سمجھنے سمجھنے کی بات ہوتی ہے, آپ سمجھیں گے آپ کے سٹینڈرڈ پہ, آپ کے لیول پر, میں سمجھوں گا میرے لیول پر, اور کوئی غالب نے اپنے لیول پر جا کر اس کو اور کیا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اب اس پر غور کرنے کی بات تھوڑا سا, تو غالب کے منہ سے بے ساختہ نکلا, ارے ظالم نے کیا شعر کہا بولے, کیا شعر کہہ دیا بولے, کاش میرا پورا دیوان وہ اپنے نام کر لے لیکن یہ شعر مجھے دے دے.
کیا
اور واقعی اگر آپ اور ہم اس کی گہرائی میں رکھ کے سوچیں کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا, یعنی دوسرا بولو تو رہے گا ہی نہیں, میں اکیلا ہی رہنا چاہیے میں نے, اور میں اکیلا کون, تم بھی نہیں, تم میرے پاس ہوتے ہو گویا یعنی تم بھی رہیں گے تو دو ہو جائیں گے نا پھر, وہ تو اگر آپ بھی نہیں رہے تو دو ہو جائیں گے, پھر محبوب بھی نہیں, تو پھر یعنی اس کا مطلب کہ وہ میرے اور تیرے کا جو فرق ہے وہ مٹ جانا چاہیے,
وہ مٹ جانا چاہیے. صحیح
تو اس کو بڑی باریکی سے, وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, مجھے سب ہے یاد میں, یاد ہو کہ نہ یاد ہو, تو اس طرح سے مومن کی شاعری اپنے زمانے میں بھی بڑی رنگ دکھائی, اور آج بھی ان کی غزلیں بہت اچھے ہمارے جو غزل گائک ہیں وہ پڑھتے ہیں مومن کی غزلوں کو.
سر ابھی جیسے مومن جی کا آپ نے ذکر کیا اور غالب جی کا بھی کیا, تو ہر انسان کو
جی
پروردگار کے پرتی ایک بہت بڑا لگاؤ رہتا ہے اور وہ سپریم مانتے ہیں بھگوان کو, تو غزل اور شعروں میں بھی بھگوان کے پرتی پروردگار کے پرتی جو کچھ بھاونائیں ویکت کی ہے تو اس کے بارے میں ذرا بتائیے, کیونکہ وہ فلوسافیکل لیول پہ بھی
جی
آدھیاتمک لیول پہ بھی وہ جاتی ہے, تو اس کے بارے میں ذرا بتائیے کہ کن کن شاعروں نے بھگوان کے پرتی جو بھاونا ہے, جو کرونا ہے, جو پیار ہے, جو شکتی ہے, اس کا ذکر اپنے ان شاعریوں میں اور اس میں کیا ہے.
دیکھیے ہمارے یہاں پر شاعری میں ایک ہوتا ہے تصوف, عشق کو دو طرح سے بیان کیا جاتا ہے سر. ایک ہوتا ہے وہ عشق جو کسی بندے سے کیا جائے, اور ایک ہوتا ہے وہ عشق جو صرف خدا سے کیا جائے.
کیا
تو وہ جو کسی بندے سے کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے عشق مجازی.
عشق
مجازی,
مجازی اس کا
مجازی یعنی جو سامنے آمنے ہمارے دکھائی دیں,
اچھا
اس سے کیا جانا عشق.
اچھا
اور ایک ہوتا ہے عشق حقیقی.
عشق حقیقی
ہاں, تو سچ معنوں میں جو عشق ہے وہ عشق پروردگار سے, اللہ ہی سے ہونا چاہیے. اچھا اب ہمارے یہاں پر یہ تصوف کہلاتی ہے وہ چیز, تصوف. تصوف جو ہے وہ ہمارے یہاں آپ چاہے وہ پرانے شعرا کو دیکھیں, ولی دکنی کو دیکھیں, سراج اورنگ آبادی کو دیکھیں, ان کے یہاں خواجہ میر درد کو دیکھیں, غالب کو دیکھیں, تو کہیں نہ کہیں کسی کے ہاں بہت کم ہے, کسی کے ہاں بہت زیادہ ہے, لیکن ہے تقریباً امیر خسرو کے زمانے سے یہ چیز چلی آ رہی ہے, جب فارسی شاعری کا بہت زیادہ زور تھا اس زمانے سے یہ چیز چلی آ رہی ہے کہ ہمارے شاعروں نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں, میں تو اپنے کمرے میں تیرے دھیان میں گم تھا. ابھی ہمارے کرشن بہاری نور ہیں, یہ کہتے ہیں کہ میں تو اپنے کمرے میں تیرے دھیان میں گم تھا, گھر کے لوگ کہتے ہیں کہ سارا گھر مہکتا تھا.
کیا
اب صرف ایک دھیان کر لینے سے گھر کا مہک جانا, یہ کسی مجازی محبوب کا تو نہیں ہو سکتا معاملہ, یہ عشق حقیقی ہی ہے جو ہمیں سب کے ہاں کسی نہ کسی صورت میں کہیں کم اور کہیں زیادہ ملتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاعر آج بھی جو شاعر ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں اپنی غزلوں میں ایک دو شعر, ایک آدھ دو شعر ایسا لاتے ہیں کہ جہاں پر جس میں ایسا صاف محسوس ہوتا ہے کہ وہ یہ عشق مجازی نہیں ہے بلکہ عشق حقیقی ہے, اور ان کا جو منشا ہے وہ صرف خدا کی طرف ہے, کسی انسان کی طرف نہیں ہے.
سر غزل کے بارے میں آپ نے ہم کو بہت اچھی طرح سے جانکاری دی
جی,
لیکن ایسا لگتا ہے کہ جب تک آپ غزل ہم کو نہ سنائیں تب تک غزل کی جانکاری پوری نہیں ہو جائے گی, तो मैं आपसे विनती करूंगा कि एक गजल सुनाइए, और जो मशहूर गजलकार है
जी
उनके नाम भी बताइए, ताकि हमारे जो विद्यार्थी हैं
जी
वो उनके बारे में, वो जो हर गांव में लाइब्रेरीज होती है वहाँ जाके उनके बारे में और ज़्यादा मालूम करें, या घर में जो बुजुर्ग है उनसे पूछ के भी वो ज़्यादा जानकारी हासिल कर सके। तो गज़ल के बारे में ज़रा हमको बताइए।
ठीक सर, मैं आपको चार अशार जो हैं वो फैज़ अहमद फैज़ जो
अच्छा,
उर्दू के बड़े नामी गिरामी शायर हैं,
फैज
शायर रहे
अहमद
हैं, फैज़
फैज।
अहमद फैज़, चार शेर मैं आपको सुना रहा हूँ गज़ल के। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा, जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा, हमारे अश्क तेरी आकिबत संवार चले। कभी तो सुबह तेरे कुंज लब से हो आगाज, कभी तो सुबह तेरे कुंज लब से हो आगाज, और कभी तो शब सरे काकुल से मुश्कुजार चले। मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुए यार से निकले तो सूएदार चले। ये फैज अहमद फैज की एक गज़ल है, और गज़ल को जहाँ तक के हमारे फहरिस्त में ऐसे ही बड़े जिनकी उर्दू गज़लें हमें हमेशा तरोताज़ा लगती हैं और जिनका हमेशा पढ़ने को जी चाहता है, तो उनकी एक बड़ी तवील फहरिस्त है। मैं यहाँ पे चंद, जैसे वली औरंगाबादी, मीर तकी मीर, ख्वाजा मीर दर्द, ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी, ख्वाजा हैदर अली आतिश, मोमिन ख़ाँ मोमिन, असदुल्ला ख़ाँ गालिब, अल्लामा इकबाल, शाद अज़ीम आबादी, हसरत मुहानी, फ़ानी बदायूनी, यगाना यास अज़ीम आबादी, फिराक गोरखपुरी और फैज़ अहमद फैज़ वगैरह वगैरह, बहुत तवील फहरिस्त है। और इनके जो कलाम हैं सर, तो इनके तकरीबन सभी हमारे शोरा जो हैं, तो उनकी कुलियात, जैसे कुलियात दीवाने गालिब, दीवाने मीर, या कुलियात मोमिन, कुलियात कुलियात अल्लामा इकबाल, कुलियात हसरत मुहानी, ये इनके अंदर इनके तमाम कलाम जो हैं वो मौजूद हैं। और हमारे तलबा अगर चाहते हैं कि इससे खूब फ़ायदा उठाएं और इसको, इससे महसूस भी हों और इससे कुछ सीखें भी, तो मैं चाहूँगा कि वो बच्चे इनकी कुलियात और इनके दीवान वगैरह जो भी मौजूद हैं, ये इनके फैज़ अहमद फैज़ और फिराक गोरखपुरी वगैरह के भी अलग अलग मजमूए कलाम हैं, जैसे गुले नगमा, दस्ते तह संग, और इसके तो इनके बहुत खूबसूरत इसके तो, और कुलियात भी मौजूद हैं इनकी, तो अगर वो उनसे फ़ायदा उठाना चाहें तो बहुत आसानी के साथ में, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि गालिब मीर वगैरह की तो शरहें, यानी जिसको एक्सप्लेनेशन बोलते हैं शेर का,
बराबर।
वो उस पर भी शरहा दीवाने गालिब के नाम से लिखी गई है, तो वो अगर उसको लेते हैं तो उनको शेर भी मिलेगा और उसमें क्या
अर्थ
कहा
भी
गया
मिलेगा,
है
बराबर
वो भी उसके अंदर
उसका
उसको
अर्थ भी।
एक्सप्लेनेशन। वैसे ही शरहा अल्लामा इकबाल, शरहा बाले जिब्रील, शरहा बांगे दरा, शरहे ज़रबे कलीम वगैरह, ये सारी शरहें भी इनकी मौजूद हैं और इनके अंदर एक्सप्लेनेशन भी बड़ी आसानी के साथ में हमारे तलबा को मिल सकता है।
सर, पर शुरुआत में आपने कसीदा का भी जिक्र किया,
जी,
तो कसीदा किसे कहते हैं और क्या उसकी विशेषता क्या है?
सर कसीदा का जो लफ्ज़ है ये है, इसके माने होते हैं गाढ़ा मग़ज़, गूदा, जो बहुत ज़्यादा, यानी जिसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े और उसके बाद जो चीज़ तैयार हो, उसके एक दूसरे माने हो कस्द, कस्द यानी इरादा, जो ऐसी शायरी जो जिसको करने के लिए एक ख़ास इरादे की एक ख़ास मूड को बनाना पड़ता है, उसके बाद वो शायरी की जाती है।
फिर वो निकल के भारत।
हाँ, तो इसके माने होते हैं, कसीदे के माने होते हैं कि ऐसा ऐसी नज्म, ऐसी शायरी जो एक ख़ास इरादे से की जाए और जिस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत हो, ये लफ्ज़ी माने हुए। अब ये जो शायरी है वो किस ज़माने में शुरू हुई कि उस जो ज़माना बादशाहों, राजाओं, नवाबों का था और उस ज़माने में लोग, शायर लोग इनाम की खातिर, बादशाहों को, अमीरों को खुश करने की खातिर, उनसे कुछ हासिल करने के लिए, उनकी नज़दीकी हासिल करने के लिए, उनके शान में अच्छी अच्छी नज़में लिखा करते थे, उनकी तारीफ़ बयान किया करते थे, तो उसके लिए बहुत खूबसूरत से खूबसूरत अल्फाज, लेकिन वो अल्फाज जो हमें कसीदों में मिलते हैं आज आम लोगों की समझ से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि वो पुरानी जो उर्दू हमारी उस ज़माने में बोली जाती थी और जिन लोगों ने कसीदे लिखे हैं वो बहुत ज़्यादा दकीक हैं, या जिनकी उर्दू बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो सिर्फ वही, और चूंकि वो उसका हमारी आम ज़िंदगी से कोई ताल्लुक नहीं होता, ये ख़ास वक्त के लिए लिखे गए शेर थे, ख़ास वक्त के लिए लिखी गई नज़में थी, आज भी लिखे जा सकते हैं, लेकिन आज ना तो वो दरबार हैं, ना बादशाह हैं, और ना ही वैसे लोग हैं, तो इसके लिए आज उस चीज़ को पसंद नहीं किया जाता। तो कसीदे के माने होते हैं एक ऐसी नज़्म जो इरादे से लिखी गई हो और जिसके पीछे बहुत ज़्यादा शायर ने मेहनत की हो।
तो ये भाषा में जो बदलाव आया हुआ है
जी,
और जो कसीदों में इस्तेमाल हुआ करती थी भाषा, उसमें जो अंतर पड़ा है, इसी के कारण आजकल कसीदा का इतना ये नहीं चल रहा है, शेर या गज़ल के मुकाबले उतना बोलबाला नहीं हो रहा है, अपनी वो सुन नहीं रही या कोई बन नहीं रही ऐसे
नहीं, वो सर उसका माहौल अलग था,
अलग था
वो माहौल, और बहुत अलग था, ये माहौल बहुत अलग है, वो माहौल तो बड़े बड़े शहनशाहों को, राजा महाराजाओं को खुश करने के लिए बहुत ज़्यादा लोग कोशिशें किया करते थे उनका, और ना तो वो, और बड़े दरबार लगते थे, बड़े बड़े तमाम मुल्क के अमीर, पैसे वाले, दौलतमंद लोग जो हैं वहाँ पर बैठते थे, मसनदें लगा लगा कर, तख्ते शाही पर अमीर बैठे हैं, बादशाह बैठे हैं, सामने शायर आ गया, उसने कदम बोसी किया और उसके बाद में कुछ अशार उनके लिए सुनाया, तो वो उस ज़माने में चूंकि फ़ारसी ज़बान का ज़्यादा गलबा था, तो वो चाहते थे कि फ़ारसी ज़बान, फ़ारसी आमेज़ उर्दू हुआ करती थी, और वो बादशाह लोग जो थे वो भी बड़े बाज़ौक हुआ करते थे, वो भी अदब को, लिटरेचर को बहुत बारीकी से समझा करते थे, तो वो लोग इस चीज़ को समझ लेते थे, लेकिन आज चूंकि हमारा ज़ौक जो है वो उर्दू का वो नहीं रहा, और जो फ़ारसी के असरात उर्दू ज़बान पर थे, हमारी शायरी पर थे, अब वो भी तकरीबन तकरीबन नहीं के बराबर रहे।
फिर भी उस ज़माने के मशहूर कसीदा लिखने वाले कौन कौन थे?
देखिए कसीदा तो मुसफ़ी ने लिखा, कसीदा मीर तकी मीर ने लिखा, सौदा ने लिखा, गालिब ने लिखा, ज़ौक ने लिखा, ये तकरीबन तकरीबन उस, देखिए सर कसीदा एक ऐसी सिन्फ, उस ज़माने का जो शायरी का रिवाज था वो ये था कि कोई भी शायर वो हर एक चीज़, जिन्हें कसीदा भी लिखता था, मरसिया भी लिखता था, मसनवी भी लिखता था, गज़ल भी लिखता था, तब जाके लोग ये मानते थे कि भाई ये मुकम्मल शायर है, तो वो ना चाहते हुए भी अपनी, कुछ लोगों की फितरत रहती है, नेचर रहता है कि वो दूसरों की तारीफ करना पसंद नहीं करते, और दूसरों की तारीफ करेंगे भी तो इसलिए नहीं करेंगे कि उनसे कुछ हासिल करना है, बल्कि बस ठीक है, यानी कर दिए, मूड आया, आप अच्छे लगे तो कह दिया, जो मन में आया बस आपकी तारीफ में कह दिया, वरना आपसे कुछ हासिल करना मतलब नहीं है। तो ऐसे माहौल था कि उस ज़माने में कसीदा कहना बहुत मुश्किल बात थी, इसलिए कोई भी शायर अपने लिए उसको चैलेंज समझता था कि अगर मैं नहीं कहूँगा तो लोग कहेंगे कि क्यों कसीदा नहीं कह सके।
अच्छा,
तो इसलिए हर शायर तो ये, लेकिन ख़ास तौर से मैं चाहूँ ये कहूँगा कि इसमें गालिब, अपने सौदा और ज़ौक,
ज़ौक, अच्छा,
तो ये दो शायर ऐसे थे जिन्होंने कसीदे में काफ़ी नाम कमाया, काफ़ी शोहरत हासिल की, और उसी एतबार से आज जितना वो गज़ल में नहीं कर सके उतना उन्होंने कसीदे में नाम कमाया, और इस कसीदे ही के नाम से आज हमारे उर्दू शायरी के अंदर वो जिंदा है। सर,
इसका फायदा।
कसीदा निगार जो शोरा भी जिनका आप कह रहे हैं, तो उसमें जो नाम कमाने वाले हमारे शोरा हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा मैंने इससे पहले भी जिक्र किया मोहम्मद रफ़ी सौदा, ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी, मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, मोमिन ख़ान मोमिन और असदुल्ला ख़ान गालिब के अलावा भी हमारे पास में जितने कदीम शायर थे तकरीबन सभी लोगों की यहाँ पर सभी लोगों ने जो है वो कसीदे लिखे भी हैं, और उस वक्त तक के वो अपने आप को शायर समझते नहीं थे, एक चैलेंज समझ कर लिखा उन्होंने, जिनकी दिलचस्पी उसमें नहीं थी उन्होंने भी कसीदा लिखा और ये समझ कर लिखा कि ये एक चैलेंज है हमारे लिए और हमको लिखना है कसीदे की, क्योंकि इसमें चार बातें सर होती हैं जो हमारे तलबा के लिए मैं ख़ास बताना चाहता हूँ कि अनासिर तरकीबी इसके कि जो चारों से गुजर कर एक कसीदा मुकम्मल होता है वो है, एक नंबर एक तशबीब या तमहीद, जिसमें हम बहार की तारीफ़ करेंगे या खुदा की तारीफ़ करेंगे या इधर उधर की कुछ बहुत सारी ऐसी, एक माहौल बनाया जाता है। उसके बाद होता, उसकी सेकंड स्टेज आती है गुरेज, गुरेज में एक दो शेर भी कहे जा सकते हैं, और उसके बाद आता है मिधा, क्योंकि कसीदा किसी की तारीफ़ में किया लिखा जाता है। अब मिसाल के तौर पे मुझे आपसे कुछ लेना है तो मैं आपसे डायरेक्ट नहीं मांगूंगा, कहीं ना कहीं बचते बचाते माहौल तैयार करूंगा, और उसके बाद में फिर इस तरह से आपसे कुछ मांगूंगा कि ताकि आपको ये एहसास ना हो कि मैं मांगने ही के लिए आया था।
क्या
तो कसीदा मामला वैसा ही होता है। तो गुरेस, और गुरेस के बाद में मिधा यानी तारीफ, वो तारीफ की जाती है, और तारीफ करने के बाद उसमें तारीफ में अशार कहे जाते हैं, और उसके बाद में हुस्ने तलब यानी फिर वो शायर जो है तो उसको दुआ देता है जिसकी तारीफ में वो कसीदा लिखा है, उसको दुआ देता है, और फिर उसके बाद में कुछ ऐसा माहौल बनाता है कि वो शायर को कुछ ना कुछ दे ही देता है।
सर, अभी आपने मरसिया का जिक्र किया,
जी
तो मरसिया किसे कहते हैं, और ये लिखने वाले मशहूर कौन कौन लोग हैं कि जिन्होंने मुर्सियों में अपना हाथ आजमा के बहुत बड़ी तारीफ प्राप्त की है या मशहूर हुए हैं?
सर, मरसिया एक ऐसी नज्म होती है जिसमें किसी मरने वाले की तारीफ बयान की जाए। जिंदगी में तारीफ तो मुश्किल होती है
मरने के बाद
लेकिन मरने के बाद तो की ही जा सकती है।
सही बात।
तो बहरहाल मरसिया एक ऐसी नज्म है जिसमें किसी भी मरने वाले की तारीफ की जाए। इसमें दो टाइप्स होती थी सर, एक शख्सी मरसिया और एक करबलाई मरसिया। करबलाई मरसिया उस मरसिए को कहते हैं जिसमें आप मुहर्रम में आपने देखा होगा कहीं ढोल ताशे बजते हुए सवारियां ताजियां, हालांकि वो चीज़ हमारे वो इन इस्लाम से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बहरहाल उसके नाम पर होते हैं। तो जो मुहर्रम के अंदर जो यहाँ पर जो भी मामलात होते हैं तो वो करबला के वक्त की याद दिलाने के लिए होते हैं। वहाँ पर हज़रत मोहम्मद हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन और उनके अहले ख़ानदान को सिर्फ इसलिए शहीद किया गया था कि उस वक्त का जो बादशाह था, खलीफा था, वो यजीद, वो ये चाहता था कि ये मेरी वफादारी करने वालों के हलके के अंदर शामिल हो जाएं, मुझसे बेअत ले लें, यानी मेरे से वफादारी का अहद करें कि हम आपसे वफादार रहेंगे। वो नहीं मानते थे इस चीज़ को कि हम अपनी जान गंवा देंगे लेकिन एक ऐसे शख्स को हम अपना रहनुमा तस्लीम नहीं कर सकते कि जिस शख्स का अपना कोई दीन नहीं, ईमान नहीं, जो शख्स का कोई कैरेक्टर नहीं, मैं आप अपनी तलाश में हूँ, मेरा कोई रहनुमा नहीं है, मैं आप अपनी तलाश में हूँ, मेरा कोई रहनुमा नहीं है, वो क्या बताएंगे राह मुझको जिन्हें खुद अपना पता नहीं है,
क्या बात है,
और शऊर ए सजदा नहीं है मुझको, तू मेरे सजदों की लाज रखना। शऊर ए सजदा नहीं है मुझको, तू मेरे सजदों की लाज रखना, ये सर तेरे आस्था से पहले किसी के आगे झुका नहीं है।
क्या बात है।
तो वो किसी के आगे सर झुकाना, वो तो जानते हैं जिस जो सर हमारा खुदा के सामने झुका है वो हम इसके सामने नहीं झुकाएंगे, एक ऐसे शख्स के आगे जो हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। तो एक मरसिया वो होता है जिसमें उनकी शहादत और उन पर होने वाले जुल्म व सितम की पूरी रुदाद उसमें बयान की जाती है, और एक मरसिया वो होता है जिसको शख्सी मरसिया कहते हैं, जिसमें किसी भी मरने वाले के लिए, किसी भी मरने वाले के लिए, चाहे वो हमारा लीडर हो, चाहे हमारा दोस्त हो, पड़ोसी हो, जिससे हम मोहब्बत करते हैं, उसकी मौत पर इजहार अफसोस किया जाए, उसकी खूबियाँ बयान की जाएँ, एक वो शख्सी मरसिया होता। तो ये मरसिए की दो किस्में,
दो किस्में। सर मसनवी का भी आपने जिक्र किया था,
जी,
तो मसनवी के बारे में आप क्या जानकारी देना चाहोगे, और उसमें ये मसनवी लिखने वाले ऐसे मशहूर कौन कौन है कि जिन्होंने मसनवी में अपना हाथ आजमा के बहुत बड़ी तारीफ हासिल की।
देखिए सर, मसनवी जैसे हमारा कसीदा है मरसिया हुआ, इसी तरह मरसी मसनवी भी एक शायरी की सिंफ है, एक शायरी की किस्म है, लेकिन इसमें मसनवी में ऐसे कुछ किस्से बयान किए जाते हैं, जिस तरह हमने इससे पहले दास्तान की बात की थी, तो आपको हमारे पास में, हालांकि मसनवी इससे बहुत अलग हटकर होती है, लेकिन आमतौर पर हमारे सामने जो मसनवियां हैं जिनका उर्दू शायरी के अंदर नाम आज भी चला रहा है, और शायद जब तक दुनिया कायम है या जब तक उर्दू जबान कायम है तब तक के रहेगा, तो उनमें वही सब किस्से कहानियां जो दास्तानों में होते थे,
अच्छा,
उसी को शायरी के रूप में, शायरी के तर्ज पर, अशार के जरिए से एक खास अंदाज में उसको पेश करने का नाम वो मसनवी कहलाती है। इसमें जो है वो एक ख़ास किस्म की तरतीब होती है, वाक़यात जो उसमें बयान किए जाते हैं, तो शायर को इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि वाक़यात का जो वाक़यात बयान किए जा रहे हैं उनमें ख़ास सिस्टम हो, एक तरतीब होना चाहिए। दूसरी चीज़ के जो मंजर निगारी पेश की जा रही है, क्योंकि उसमें जो भी किया जाता है मसनवी में, तो इस तरह से मंजर पेश किए जाते हैं कि क्योंकि लंबे तवील किस्से रहते हैं, तो वो पढ़ने वाले की आंखों के सामने वो मंजर आ जाना चाहिए। तीसरी चीज़ ये रहती है कि उसमें किरदार जो पेश किए जाते हैं वो अच्छे होना चाहिए, उनका मेयार होना चाहिए, और दिल को छू लेने वाले अच्छे किरदार होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें बहुत खूबसूरती के, फिर उसके साथ में जो किरदारों के अंदर, आपने जैसे हमने इससे पहले भी कहा था कि दास्तानों में जिस तरह किरदार बयान किए जाते हैं कि जिन है, परी वगैरह वगैरह, तो आम तौर पर हमारे यहाँ भी मसनवियों के अंदर ये सब चीज़ें मिलती हैं अपने उर्दू शायरी के अंदर। मसनवी के अंदर तो जो है हमारे पास में बहुत सारे नाम जो है वो हमारी फहरिस्त के अंदर हैं, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ चंद नाम जो है वो उसके अंदर बताता हूँ कि एक तो मुकीमी हैं जिन्होंने चंद्रबदन नाम की एक मसनवी लिखी, बड़े मशहूर थे। इसके बाद में रुस्तमी हैं, ये सब दखनी पुराने कदीम शायर थे जिन्होंने खावर नामा नाम से एक मसनवी लिखी थी। के अलावा गवासी हैं जिन्होंने अली नामा और गुलशन इश्क नाम की मसनवी लिखी। जहर इश्क है, और इसमें मीर तकी मीर वगैरह ने भी बहुत अच्छी मसनवी लिखी। फिर कुतुब मुश्तरी, ये मुल्ला वजही ने लिखी है। सर मैं इसके बारे में कुतुब मुश्तरी जो है वो एक कुली कुतुब शाह जो गोलकुंडा के सुल्तान थे, ये उनकी, ये एक भागमती नाम की एक लड़की से मोहब्बत करते थे, इसमें कुतुब मुश्तरी के अंदर वो बताया गया है, और उससे मुलाकात के लिए वो जाते थे नदी पार करके। बादशाह को मालूम था, एक मरतबा दरिया को तूफान आया हुआ था, फिर भी वो तैर के और उसके लिए मुलाकात को गए। तो बादशाह ने उस पर पुल बनवा दिया था, बाप ने ब्रिज बनवा दिया कि बेटा कहीं डूब ना जाए। उसके बाद में जब वो बच्चा बादशाह बना, सुल्तान कुली कुतुब शाह, तो उसने भागमती को अपने महल में लाया, उसको हैदरी बेगम का खिताब दिया और उसके नाम से एक भागनगर करके एक बस्ती आबाद किया और भागनगर को बाद में हैदराबाद किया। तो ये उसी का किस्सा जो है उसके अंदर बयान किया गया था।
सर, नज्म का आपने जिक्र किया, मुझे याद आया अभी कि जब हम दास्तान के बारे में बात कर रहे थे, नॉवेल के बारे में, तब प्लॉट का आपने जिक्र किया था कि जो प्लॉट है उसके अंदर
जी जी
उसको बहुत बड़ा महत्व है। अगर ये नॉवेल में प्लॉट का इतना बड़ा महत्व है तो मेरे ख्याल से तो मस्तवी लिखना उससे भी बहुत बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि प्लॉट को इतने संक्षिप्त में लिखना, इतने शॉर्ट में लिखना, तो मस्तवी लिखने के लिए कुछ दूसरा टेक्निक या दूसरे की हुनर की ज़रूरत होती है कि जिसके कारण वो लिखने वाले कम है, या जो मशहूर मस्तवी लिखने वाले हैं उनमें आपको क्या क्या विशेषताएं उनकी लगती है आपको?
देखिए सर, ये बात तो ज़रूरी है कि जब कोई चीज़ बयान की जाती है और उसमें अगर जैसे किसी चीज़ की जिस तरह से शुरुआत होती है उसी से उसी तरह से उसका एंड भी होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं अगर इधर उधर शायर भटक जाए या कहानीकार नावल या दास्तान वगैरह में भटक जाए और ऐसी जगह जाए, ऐसी गली में घुस जाए कि जिससे मंजिल का कोई लेना देना ना हो, तो उसको हम अनाड़ी ही समझेंगे। यहाँ पर एक चीज़ तो ये है कि मसनवी शायराना अंदाज में की जाती है, दूसरी चीज़ यह है कि उसके प्लॉट पर, जो प्लॉट है यानी प्लॉट एक स्ट्रक्चर है, तो उसमें ऐसा होना चाहिए कि उसमें जो वाकयात, जो किस्से कहानियां जो भी बयान की जा रही हैं, तो एक दूसरे से उसका कनेक्शन होना चाहिए,
लिंक होना बराबर है।
जब लिंक नहीं रहेगी तो वो गैर जरूरी लगेगा,
गैर जरूरी बराबर,
और जो गैर जरूरी लगेगा तो पढ़ने वाले को और सुनने वाले को भी लगेगा कि अरे इससे इसका क्या ताल्लुक, हो गई खत्म यहाँ। तो कुछ मसनवियाँ रही हैं ऐसी कि जिन पर एतराज़ किया गया कि भाई इसमें यहाँ पर मसनवी ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी उसको बढ़ावा दिया गया, तो वो उसका एक ऐब समझा जाता। पंडित दयाशंकर नसीम ने एक खूबसूरत नज़्म जो है वो हमारी उर्दू शायरी को दी है, एक मसनवी, बेहतरीन मसनवी, जो यकीनन उनकी याद हमको दिलाती रहेगी उसकी ज़बान व बयान की वजह से, उनके अंदाज़ बयान की वजह से, और इसीलिए वो ज़िंदा भी है इतने सालों के बाद भी, इतने सदियों के बाद भी। तो एक खूबसूरत मसनवी है और अदब में उसका अपना एक मकाम है। तो गुलजार नसीम ही के नाम से, मसनवी गुलजार नसीम के नाम से किताब है, और बहुत कॉस्टली भी नहीं है। तो अगर हम यहाँ से अलीगढ़ जो है वो मकतबा जामिया या एजुकेशन बुक हाउस को लिखे तो वो वहाँ से मिल जाती है, या यहाँ पे भी मालेगांव, मुंबई वगैरह या बुरहानपुर में बहुत आसानी के साथ में किताबें। और जो इससे पहले भी मैंने जब दीवान बताया आप, उसमें मरसिए के लिए जो है वो हमारे कुलियाते मीर अनीस, इनकी तमाम इसके अंदर, या उर्दू के बेहतरीन मरासी, ऐसे ये करके किताब है, तो उसके अंदर भी सारे, या मुंतखब मरसिए, उसमें भी ये सारी, बहुत सारी इस तरह की किताबें हैं जो हमको मिल सकती हैं, और सब में ये मरसिए जो हैं वो मरसिए भी मिलेंगे, मसनवी मिलेगी, और गज़लों के लिए भी मैंने आपसे बताया कि मजमूए हाँ। भी उनके और दीवान भी, वो सब अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, और इन पर क्रिटिकल जो व्यूज़ हैं वो भी लिखे हुए हैं, वो भी अलग अलग, तो उसके लिए भी अच्छी तो पढ़े जा सकते हैं सर।
तो सहरुल बयान का एक किस्सा, जैसे कि सुबह जब चर्चा हुई थी आपने बताया था
जी जी,
तो वो किस्सा क्या है, वो क्या वाकया है सहरुल बयान?
सर, सहरुल बयान में एक ऐसा किस्सा बयान किया गया है कि एक बादशाह है, और उस बादशाह के यहाँ जो औलाद पैदा होती है तो उसको नजूमी जो हैं, जो जिसको हम ज्योतिष कहते हैं, तो वो उनको बताते हैं कि ये बच्चे को जो है आप 12 साल तक के नहीं देखेंगे, तो वो कहता ठीक है कोई बात नहीं, माफ करना, 12 साल तक के ये बच्चा जो है वो बाहर नहीं निकलेगा। तो वो जो बच्चे के ऊपर बड़ी नज़र रखी जाती है और उसकी परवरिश जो है वो बड़ी अलग महल के अंदर होती है, ताकि वो बच्चा आसमान ना देखे,
बाहरी
खुली
दुनिया
खुली
से
बाहरी
बिल्कुल
दुनिया से उसका कोई ताल्लुक ना रहे।
बराबर
वो गिनने में, वक्त गिनने में, दिनों के शुमार में कुछ भूल हो जाती है, एक दिन की भूल होती है, लेकिन एक दिन बाकी रहता है और बादशाह ये समझता है कि आज इसके तमाम वो दिन, वो जो 12 साल का खटका है, जो खौफ अंदेशा है, ये निकल चुका है अब। तो वो बादशाह के यहाँ पर बड़ा प्रोग्राम होता है और उसी दिन जो है वो बच्चा भी जिद करता है कि मैं
दुनिया
ऊपर
के
महल
सामने
की
हो।
छत पर जो है वो जाके आराम करना चाहता हूँ। बादशाह उसको इजाज़त दे देता है और वो साहब वो इत्तेफाक से उधर से, वो का आखिरी दिन रहता है, वो ख़त्म नहीं होता, तो उधर से एक परी गुजरती है। वो परी जो है उसको जब देखती है तो वो उसके हुस्न पे फरेफ्ता हो जाती है, तो परी वहाँ से उसको उठा के लेके चली जाती है। वो ले जाती है अपने परिस्तान में, रखती है उसको वहाँ पर। वो बच्चा बहुत रोता है, बहुत गिड़गिड़ाता है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, लेकिन वो चूंकि परी उस पर मर मिटती है, परी हर मुमकिन उसको समझाने की, मनाने की, उसको राजी रखने की कोशिश करती है, लेकिन मानता नहीं। फिर वो उसको एक घोड़ा देती है कि इस घोड़े पर तुम घूम फिर कर, वो जादुई घोड़ा रहता है, वापस आ जाना ताकि तुम्हारा दिल बहले। वो जब वहाँ जाता है तो जाने के बाद में एक परी एक महल में देखता है कि बड़ा खूबसूरत महल है। वो महल में उतरता है, देखता है तो वहाँ एक माह जो एक जो है वो बद्र मुनीर करके एक शहजादी का महल होता है। तो वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों एक दूसरे पर मर मिटते हैं। फिर वो उन वहाँ की जो उसके वजीर की जो बेटी रहती है शहजादी के, तो वो नजमुन निसा उसका नाम होता है, वो दोनों की मुलाकातें करवाती है। ये बात जो है वो परी को मालूम पड़
परी को
जाती है,
मालूम हो जाता
तो वो उसको एक कुएं में कैद करवा देती है।
है। ओहो
और फिर ये उसकी तला ये इधर बद्र मुनीर जो है शहजादी, वो उसके लिए खूब रोती है, गिड़गिड़ाती है, बिल्कुल अपने दीवाना हो जाती है, वो दीवानी हो जाती है। तो उसके बाद में वो जो नजमुन्निसा नाम की उसकी वजीर की लड़की है, वो उसको वहाँ से भेष बदल कर और वो ढूंढने निकलती है। फिर एक जिन के शहजादे की मदद से वो उसको हासिल करके,
हासिल करते हैं,
और वो दोनों
एक हो
उसके
जाते
एक दूसरे से मिलते हैं, उनकी शादी वहाँ होती है। और ये वजीरजादी जिस जिन के शहजादे से मदद लेती है, वो जिन का शहजादे इसी शर्त में मदद करता है कि तू मेरे से शादी करेगी,
तू मेरे से शादी।
तो वो अपनी शहजादी के लिए ये कुर्बानी देती है कि वो फिर उससे शादी कर लेती है।
तो ये इतनी बड़ी बात मस्तवी में शरीक करना इतने
जी
छोटे अंदाज में,
जी
ये तो बहुत बड़ा कठिन टास्क है या कठिन काम है। तो इतनी बड़ी कहानी मस्तवी में संभाल लेना। सर अभी आपने मरसिया और मस्तवी के बारे में बताया, सर आपने एक बहुत बड़े नाम का जिक्र किया,
जी
गुलजार नसीम, तो उनके बारे में जरा और जानकारी मैं चाहूँगा आपसे।
सर गुलजारे नसीम उर्दू की दूसरी सबसे मकबूल मसनवी है। इसे उर्दू के बड़े मशहूर शायर पंडित दयाशंकर नसीम ने लिखा है, और इसमें असल में एक वैसे एक किस्सा बयान किया गया है कि एक बादशाह है, उसके चार बेटे हैं, उसके यहाँ पांचवा बेटा भी पैदा होता है, लेकिन वो फिर वैसे ही उसको नजूमी जो है वो कहते हैं कि अगर तुम उसको देखेंगे इतने साल तक के तो आपकी आंखें चली जाएंगी।
चलिए।
तो अचानक ऐसी होता है, वो एहतियात तो करता है कि मैं उसको इतने 10 साल 12 साल जो उसका टाइम पीरियड रहता है वो ना देखूं, लेकिन अचानक एक दिन वो बच्चा वो उसको छत पर महल के उस पर दिखाई देता है और वो बादशाह की आंखें चली जाती हैं। तो वो बड़े बड़े हकीमों को बुलाता है, तो वो बताते हैं कि एक बकावली का फूल है, उसके बकावली के बाग में एक फूल है, गुले रम है जो बाग है उसके अंदर फूल है, उससे तुम्हारी आंखें अच्छी हो सकती हैं। अब वो जब बेटे को देखने से वो अंधा हो जाता है, तो उसको ये जो उसके जो दूसरे भाई लोग रहते हैं ये सब मिलके बादशाह को उसके खिलाफ करते हैं और उसको मुल्क के बाहर निकाल देते हैं, तो वो कहीं दूर रहता है। जब ये बकौली के फूल का पता चलता है कि आँखों पे रखने से उसकी रोशनी वापस आएगी, तो ये चारों भाई जो हैं वो उसको वहाँ पर जाते हैं ताकि वहाँ पर वो फूल लाएँ। तो वो चारों भाई जब जाते हैं वहाँ पर तो सब नाकाम रहते हैं। एक हमाला देवी करके रहती है, वो हमाला देवी जो है वो सबको सबके साथ जुआ खेलती है, फ्रॉड करती है, साथ चारों भाइयों को नंगा कर देती है, उनके पास कुछ नहीं रहता। लेकिन ये उससे मुकाबला भी करता है, उसको हराता भी है, फिर उसको अपना उस पर हावी भी हो जाता है। छोटा वाला भाई वो भी उनके साथ रहता है। फिर वो ऐसे कुछ अपने इस तरह के जो उसको साथी जिन्नात जो हैं उसकी मदद करते हैं, और भेष बदल के चूहे बनकर उस बाग के अंदर ऐसा सुरंग खोदते हैं ताकि वहाँ तक कि शहजादा पहुँच जाए, और इस तरह से वो फूल चुरा कर लेके आते हैं जिससे बादशाह की आँखें अच्छी हो जाती हैं।
तो
जी
नज्म के, नज्म किसे कहते हैं, नज्म का मतलब क्या है, और गजल और नज्म दोनों एक है या उसमें कुछ फर्क है, ये जरा बताइए आपको।
देखिए सर, नज्म के माने सिस्टम,
सिस्टम, अच्छा।
एक ऐसा तरीक़ा कार कि जहाँ पर शायर एक ही मरकजी ख्याल, एक ही सेंट्रल आइडिया को लेकर पूरी एक शायरी की नज्म कहता है, पूरी एक नज्म कहता है। जैसे मिसाल के तौर पर शायर ने अगर गरीबी है, गरीबी पर अगर कुछ कहना चाहे, वो अगर 10 शेर भी कहेगा तो सिर्फ वो एक ही उसका सेंट्रल आइडिया होगा।
फोकस गरीबी पर
हाँ,
होगा।
अगर वो किसी पर मर मिट रहा है या कोई बात, कोई एक तासुर, कोई एक ऐसा इम्प्रेशन वो देना चाह रहा है, तो वो सिर्फ वही एक ही बात की जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर एक एक लड़की है, आज उसकी शादी हो रही है, वो अपने आशिक से मिलने के लिए आ रही है और वो रो रही है। अब आशिक उसको समझा रहा है, गजल का शायर होगा तो एक शेर में कुछ ना कुछ कह देगा,
बराबर।
लेकिन नज्म का शायर है वो एक शेर बोल के खामोश नहीं होगा। वो कहेगा कि मेरी महबूब, तेरी आंख में आंसू क्यों है, आज की शब तो तेरे घर में बहार आई है, जगमगाती है हर एक चीज सितारों की तरह, देख तो कैसी मसरत की घटा छाई है, लब से शहनाई के उबले हैं मिलन के नगमे, बांधने अहदे वफा तुझसे कोई आता है, और देख कर तुझको दुल्हन खुश तो हुआ हूं लेकिन आरजुओं का मेरी दीप बुझा जाता है।
क्या बात है।
मेरी महबूब, तुझको मेरे सर की कसम, जिस्म मिलने से कहीं प्यार अमर होता है, मुद्दतों से यही दस्तूर है इस दुनिया का, कोई हंसता है यहां और कोई रोता है,
रोता है।
तेरी आंखों में ये आंसू नहीं देखे जाते, आ मैं खुदा आज तेरी मांग में तारे भर दूं, एक हल्के से तबस्सुम पे तेरी जाने वफा, दिल तो क्या चीज है दुनिया भी निछावर कर दूं, और जब भी ये खबर आएगी गमगीन है तू, टीस जख्मों की मेरे और भी बढ़ जाएगी, दिल जो मासूम है हो जाएगा टुकड़े टुकड़े, मांगने से भी मुझे मौत नहीं आएगी,
क्या
मेरा
बात।
क्या है, मैं किसी तरह से जी ही लूंगा और जख्म जो दिल पे पड़ा है उसे सी ही लूंगा।
क्या बात।
ये नज्म है,
ये नहीं।
लेकिन अगर गजल का शायर चाहेगा तो उसको किसी तरह से एक दो मिसरे के अंदर अपनी बात कहकर बात को खत्म कर देगा। तो नज्म के अंदर जो बात कही जाती है, पूरी एक नज्म में कोई एक ख्याल, कोई एक टॉपिक, कोई एक मौजू लिया जाता है, जबकि गजल में, गजल का हर शेर अलग होता है, हर एक शेर अलग होता है। फूलों से बदन उनके कांटे हैं जबानों में,
फूलों से
फूलों से बदन
बदन
उनके
के,
कांटे हैं जबानों में, शीशे के हैं दरवाजे पत्थर की दुकानों में,
क्या बात है,
और बेपर्दा जो निकले हो कश्मीर की वादी में, क्या आग लगाओगे बर्फीली चट्टानों में,
क्या बात है।
शोहरत की फिजाओं में इतना ना उड़ो सागर, परवाज ना खो जाए इन ऊंची उड़ानों में। ये गजल का शायर है,
गजल का शायर।
हर एक गजल के हर एक शेर में आपको अलग बात मिलेगी। गजल के हर शेर के अंदर अलग बात मिलेगी।
नज्म के बारे में आपने जो बताया,
जी जी,
तो ऐसे मशहूर नज्मकार कौन कौन से हैं, और फैज अहमद फैज ने जो नज्म लिखी है
जी,
उसकी अगर एक दो विशेषताएं बताएं तो वो भी अच्छा रहेगा।
देखिए सर, मैं आपको फैज, जोश, ये दो तो ऐसे शोरा है हमारे यहाँ कि ये दोनों ही कम्युनिज्म से भी मुतासिर थे, और जो हमारे जो 1936 में जो तहरीक चली थी, जिसको हम तरक्की पसंद तहरीक के नाम से जानते हैं, उससे भी मुतासिर थे। और इन्होंने जो कुछ भी लिखा है, तो ख़ास तौर से मैं जोश की बात आपसे इसलिए बता रहा हूँ कि जोश का नाम जैसे आप सुन ही रहे कि जोश, तो इनका नाम तो शब्बीर हुसैन था लेकिन जोश तखल्लुस रखते थे। तो उन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत पर, और उसके बाद में फिर अंग्रेज़ों के बाद में जब जो माहौल बदला और आज़ाद हुआ हिंदुस्तान, तो फिर भी कुछ हालात ऐसे ख़राब रहे कि वो मुतमईन नहीं हो सके पूरी तरह, सेटिस्फेक्शन उनको नहीं हुआ, तो वो जले कटे इस मामले में रहते थे। वो चाहते थे कि एक ऐसा साफ सुथरा खूबसूरत, लेकिन वैसा उनको नहीं मिल सकता था। तो वो क्या कहते हैं कि ये एक नज्म का अंदाज में कि दौलत मिली तो और भी नादार हो गए।
क्या बात है,
नादार यानी गरीब,
गरीब।
दौलत मिली तो और भी नादार हो गए, शादी हुई तो गम के खजाने, दौलत हुई तो और भी नादार हो गए, सेहत हुई नसीब तो बीमार हो गए, उतरा जो बार और गिरा बार हो गए, आजाद यूं हुए कि गिरफ्तार हो गए। शादी हुई तो गम के खजाने लुटा दिए, कुछ यूं दिए जलाए कि दिल ही बुझा दिए, सहरा बंधा तो शर्म के पर्दे उठा दिए, मेहंदी लगी तो खून के दरिया बहा दिए, क्या क्या ना गुल खिले रविश फैज आम से, और कांटे पड़े जबान में फूलों के नाम से।
क्या बात,
ये जोश मली आबादी, बड़ी खूबसूरत नज़में इन्होंने, तंजिया इसमें काट थी, शिकवा था, शिकायत थी, और दिल का एक दर्द था जिसको नज़मों के ज़रिए से जोश जैसे शायरों ने पेश किया। वैसे ही एक मशहूर दूसरे हमारे यहाँ पे इसके हमारे कोर्स में भी अल्लामा इकबाल, इन्होंने भी जो नज़में कहीं, तो इनकी भी प्यारी प्यारी नज़में, बड़ी अच्छी अच्छी नज़में उन्होंने कही। मैं सिर्फ यहाँ पर उस एक हुब्बुल वतनी और क्या जज्बा उनके यहाँ पर क्या था, वो इनके उनकी नज़म के अंदर से चार शेर में आपको, दो तीन शेर में सुनाता हूँ कि सच कह दूँ ए ब्रह्मण गर तू बुरा ना माने।
सच कह दूँ
ए ब्रह्मण
ए हाँ,
गर तू बुरा ना माने, तेरे सनम कदों के बुत हो गए पुराने, अपनों से बैर रखना तूने बुतों से सीखा, वाइस को भी सिखाया जंगो जदल खुदा ने। उनको ये सब ये चीजें पसंद नहीं थी कि मुल्ला पंडित वगैरह के इसके अंदर, तो वो कहते हैं सच कह दूं ऐ ब्रह्मण गर तू बुरा ना माने, तेरे सनम कदों के बुत हो गए पुराने, अपनों से बैर रखना तूने बुतों से सीखा, वाइस को भी सिखाया जंगो जदल खुदा ने, तंग आके मैंने आखिर देरो हरम को छोड़ा, मंदिर और मस्जिद को,
देरो हरम मंदिर,
तंग आके मैंने आखिर देरो हरम को छोड़ा, वाइस का वाज छोड़ा छोड़े तेरे फसाने, वाइस का वाज छोड़ा छोड़े तेरे फसाने, पत्थर की मूर्तों में समझा है तू खुदा है, खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है।
क्या बात
है, तो ये नज्म की कुछ खास बातें थी जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। देखिए उर्दू शायरी में सबसे पहला नाम जो है सर, वो नसीर अकबर आबादी का मिलता है।
अच्छा,
उसके साथ ही फिर उनके बाद में ये नज़्म तकरीबन ख़त्म हो गई थी।
अच्छा,
लेकिन फिर हाली और आसाद, ये दो बड़े नाम हैं उर्दू, हमारे उर्दू अदब के, उर्दू लिटरेचर के, इन्होंने वापस इस नज़्म को ज़िंदा किया, और उसके बाद में फिर नज़्म का सिलसिला शुरू हुआ। तो उसके बाद में खुद हाली ने अच्छी नज़में कही हैं, उनकी एक नज़्म तो बहुत ज़्यादा मशहूर भी है, उसके अलावा आज़ाद ने नज़में कही, इकबाल ने नज़में कही, फैज़ अहमद फैज़ ने नज़में कही, जोश मली आबादी ने नज़में कही, चकबस्त ने नज़में कही, आज भी बहुत सारे शुरा से एक बड़ी लंबी चौड़ी तवील फहरिस्त है जो शायर हमारे यहाँ पर नज़्म कह रहे हैं। लेकिन जैसा कि जोश वगैरह जो है उस ज़माने में, जिस ज़माने में इकबाल और जोश, इनकी नज़में हमारी उर्दू शायरी में काफ़ी जो है
मशहूर
वो मशहूर हैं
मशहूर है।
और बड़ी पसंद भी की जाती हैं।
सर, आपके विचार से नज़्म लिखना ज़्यादा कठिन है ऐसा लगता है, गज़ल के मुकाबले नज़्म लिखना?
सर सच बात तो यह है कि एक मर्तबा किसी ने सुकरात से पूछ अरस्तु से पूछा था कि आपको अगर एक घंटा बोलने के नहीं, 5 मिनट अगर तकरीर करने के लिए कहा जाए तो आपको तैयारी को कितना वक्त लगेगा? तो उसने कहा था 1 महीना। कहा अगर 10 मिनट बोलने के लिए तो कहा 15 दिन। वो वक्त बढ़ाता गया और इधर ये वक्त कम करता चला गया। कहा अगर 1 घंटा बोलने के लिए तो उसने कहा कि उसके लिए तो मैं अभी भी तैयार हूँ।
क्या
इसका मतलब ये हुआ कि कम लफ्ज़ों में किसी बात को कहना ये ज़्यादा बड़ी बात होती है बनिस्बत इसके के, लेकिन है दोनों ही मुश्किल
मुश्किल है दोनों।
जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब है जिस
सही
तो
बात
हम
है।
किसी को भी कम या ज़्यादा
कम या ज़्यादा
हाँ
बराबर।
तो बहरहाल लेकिन गज़ल में ये शायर की कोशिश होती है कि सिर्फ कम से कम लफ्ज़ों के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बात कहने की कोशिश करे और वो उसमें कामयाब हो जाता है। तो अगर गज़ल में अच्छी बात अच्छे ढंग से कही गई है एक एक शेर में तो ज़ाहिर सी बात है गज़ल का वो शेर हमेशा हमारे जहनों पर रहेगा, और नहीं तो नज़में याद रह जाती हैं। ये भी कमाल की बात है, बड़ी बड़ी नज़में याद रह जाती
हाँ
हैं।
वही तो सही बात है। तो सर अभी गज़ल नज़्म मसनवी मरसिया इसका आपने बताया हमको, बहुत अच्छी तरह से बताया, बहुत शेर भी आपने जो बताए, लेकिन अभी तहसीन शेर के बारे में मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँगा। पहला तो एक बताइए कि शेर किसे कहते हैं, उसके क्या मायने है, क्या विशेषताएं होती है?
देखिए सर, शेर जो है वो लफ्ज़ शऊर शऊर यानी उसकी समझ बूझ,
अच्छा
उस लफ्ज़ को अगर आप देखें तो वो उसी कैटेगरी का लफ्ज़ है। एक ऐसी बात जो एक ख़ास तरीके से कलाम मौजू जिसको कहते हैं कि ख़ास तरीके से ख़ास वज़न के साथ बहर के साथ पेश की जाए वो शेर। मिसाल के तौर पर हमने इससे पहले भी बात की थी कि कोई बात को हम अगर नसरी अंदाज में कहते हैं, प्रोज के अंदाज में कहते हैं तो बात नहीं बनती
नहीं बनती,
लेकिन अगर उसी को हम सिर्फ दो मिसरों को सिस्टम के साथ अगर कह के और पेश करें तो वो दिल पर असर कर जाती है।
सही बात।
शायर कहता है कि रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ। अब हम किसी को लंबे चौड़े फोन पर आधे आधे घंटे बात करने से बेहतर है कि हम उसको एक दो चार शेर सुना दें।
क्या बात है, सही बात है।
रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ।
क्या बात है।
किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू हमसे खफा है तो जमाने के लिए आ। और कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख, तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए आ।
क्या बात।
तो जाहिर सी बात है कि ये चीज जो है वो सुनने वाले पे दो मिसरे भी होंगे
दो मिसरे
तो वो असर करेंगे,
इफेक्टिव ज्यादा लगता है,
इफेक्टिव होंगे।
सर अभी शेर में मतला और मक्ता ये
जी
जो दो लफ्ज है तो
जी जी
इनका क्या महत्व है शेर में?
सर मैं आपको यहाँ पर मतला ऐसे शेर को कहते हैं जो गजल में सबसे पहला होता है,
अच्छा,
और जिसके दोनों ही मिसरे उसमें रदीफ भी होती है और काफिया भी होता है, यानी एक जैसे अल्फाज भी होते हैं और एक ही तरह के अल्फाज होते हैं। जैसे देखिए मैं आपको दो शेर सुनाता हूँ,
हाँ,
आपको उसमें समझ में आएगा कि सबके कहने से इरादा नहीं बदला जाता,
सबके कहने से
इरादा नहीं बदला जाता, हर सहेली से दुपट्टा नहीं बदला जाता।
क्या?
अब देखिए ये मतला है,
मतला
इरादा दुपट्टा ये एक जैसे अल्फाज है, ये काफिया है। नहीं बदला जाता दोनों लाइनों में आया है, दोनों मिसरों में आया है, ये रदीफ है, सबके कहने से इरादा नहीं बदला जाता, हर सहेली से दुपट्टा नहीं बदला जाता। हम के शायर हैं, सियासत नहीं आती हमको, हम के शायर हैं सियासत नहीं आती हमको, हमसे मुंह देख के लहजा नहीं बदला जाता।
क्या
अब ये इसमें इसमें रदीफ और काफिया भी है, लेकिन गजल का जो पहला शेर होता है जिसके दोनों मिसरे हम रदीफ और हम काफिया होते हैं वो मतला कहलाता है, और मक्ता वो शेर होता है जिसमें शायर का नाम शामिल होता है। एक दूसरी मिसाल मैं आपको देता हूं कि भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है।
क्या भरोसा,
भरोसा मत करो सांसों, लफ्जों पर ध्यान रखना सर, भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं हवेली टूट जाती है।
क्या बात है,
छतें महफूज रहती हैं हवेली टूट जाती है, लड़कपन में किए वादे की कुछ कीमत नहीं होती, लड़कपन में किए वादे की कुछ कीमत नहीं होती, अंगूठी हाथ में रहती है मंगनी टूट जाती है।
क्या
अब ये पहला आप अगर देखेंगे दो मिसरे जो उसके अंदर बताए गए हैं, भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं हवेली टूट जाती है, तो हवेली और डोरी ये दोनों जो हैं एक जैसे लफ्ज हैं, एक नहीं है लेकिन एक उनमें बोलने में जो हम आहंगी है ये गजल के लिए एक माहौल तैयार करते हैं, मतला एक गजल के लिए माहौल तैयार करता है और बाकी फिर जो अशार हैं वो आगे उसको बढ़ाने का काम करते हैं।
सर जैसे कि अभी आपने कहा कि अच्छे शेर खाली सुनने के लिए या सुनाने के लिए नहीं है,
जी जी जी,
लेकिन वो उसे जानने के लिए,
जी जी,
अपने आप में भी कुछ ऐसी क्वालिटीज, कुछ ऐसा हुनर चाहिए कि उसकी कीमत, हर एक शब्द की कीमत हम पहचान सके, हम जान सके, तो किस तरह से एक आम आदमी ने शेर पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए, और वो अच्छी तरह से समझने के लिए उसने क्या क्या प्रयास करना चाहिए कि जिसके कारण जो शेर वो पढ़ रहा है उसकी भी इज्जत रहे और उसको ये जानकारी भी हो, वो गहराई भी उसको समझ में आए और ज्ञान भी हो।
सर सबसे पहली चीज तो ये है कि शेर को अच्छा, कोई भी शेर हो उसको बार बार अगर हमारी दिलचस्पी है,
दिलचस्पी होना बहुत जरूरी,
अगर दिलचस्पी हमारी है तो हम उसको पढ़ना भी हमें आ जाएगा और उस पर थोड़ी सी मेहनत की जरूरत होती है। अच्छा। इसमें एक आहंग होता है, एक रिदिम होती है, वो रिदिम जैसा कि हम गीत गजल वगैरह कुछ भी अगर सुनते हैं तो एक खास किस्म की उसके अंदर हम आहंगी होती है जिसे सुनकर इंसान झूमने लगता है। तो अगर वो चीज़ हमारे अंदर अगर हम अगर पढ़ते हैं उसको और उसी को हमको सामने रखना पड़ेगा कि पहली चीज़ तो यह कि हम उसमें दिलचस्पी लें, दूसरी चीज़ ये कि हमको वो ज़बान जो हम पढ़ रहे हैं उससे दिलचस्पी हो, उसका सुनना अच्छा लगे, ज़रूरी नहीं कि आप समझ रहे हों उसको। क्योंकि बर्नार्ड शाह एक मरतबा तकरीर कर रहे थे, आज गजल ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सुनते हैं समझते नहीं लेकिन फिर भी पसंद करते हैं। बर्नार्ड शाह तकरीर कर रहे थे तो एक शख्स बहुत बड़े मजे ले लेके मुंडिया हिला रहा था, तो वो देख रहे थे और वो गालिबन ये जानते थे कि ये शख्स मेरी जबान नहीं समझता, जो मैं जिस जबान में तकरीर कर रहा हूँ ये वो नहीं समझ रहा है। बर्नार्ड शाह तकरीर के बाद मुझसे पूछा कि तुमको तकरीर कैसी लगी, बोले बहुत अच्छी, बोले तुमको समझता है कि मैं जिस जबान में जो कह रहा था वो तुमको समझ रही थी क्या, तो कह नहीं, तो कहा फिर तुमको तकरीर कैसी अच्छी लगी, जिस जबान को तुम जानते पहचानते नहीं समझते नहीं उसमें तुमने तकरीर सुनी और ना तुमको अच्छी भी लगी, तो कहा हाँ। तो बर्नार्ड शाह बोले ये तो अजीब बात है। तो बर्नार्ड शाह से उसने सवाल किया कि आपने कभी चिड़ियों का सुबह सुबह के वक्त में चहचहाना सुना है, तो कहा हाँ, तो कहा आपको कैसा लगता है, तो कहा बहुत अच्छा, तो कहा आपको चिड़ियों की जबान आती है क्या,
क्या
तो जरूरी नहीं है, अगर उसको खूबसूरत लबो लहजे में भी पढ़ा जाए अब के मौसम में अजब साजिशें हालात हुई, शहर तपते रहे सहराओं में बरसात हुई, कोई न समझा लहू बरसा के पानी बरसा, और लोग बच्चों की तरह खुश हैं कि बरसात हुई।
क्या
तो जब इंसान को पढ़ने वाले का लबो लहजा अगर खूबसूरत है और वो उसको सुन रहा है, उसकी दिलचस्पी उसमें बढ़ रही है, तो वो ज़रूर उसमें से कुछ ना कुछ हासिल करना चाहेगा, और उसका ये ज़ौक, उसकी ये जस्तुजू उसको शेर समझने के लिए तैयार कर देगी।
और ये जो इंटरेस्ट पैदा करना, जैसे कि अभी हमारे विद्यार्थियों को भी बहुत से ऐसे है कि जिनको शेर पढ़ना बहुत अच्छा लगता है,
जी जी,
लेकिन उसके लिए वो इंटरेस्ट पैदा करना
जी
और वो अच्छी तरह से पढ़ना बहुत जरूरी है।
जी जी
सर, आज आपने गजल, कसीदा, मसनवी, नज़्म और शेर के बारे में हमको बहुत बड़ी जानकारी दी, बहुत अच्छी जानकारी दी। आपने जो शेर बीच बीच में बोले
जी,
वो तो अभी भी हमारे दिल में घूम रहे हैं, तो मैं बस उसी याद से और उसी वातावरण में या उसी भावना से मैं रहना चाहूँगा। और जिस तरह से आपने इन सारी चीज़ों के बारे में बताया है, मुझे विश्वास है कि जिस अंदाज में आपने कहा, जिस अंदाज में आपने बताया, वो बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि सर आप हमसे बात कर रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि कुछ सिखा रहे हैं। तो यही अंदाज जो है वो उर्दू सीखने के लिए या गज़ल जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं हमारे विद्यार्थियों की ओर से और विद्यापीठ की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ, और इसी साथ में आपको एक विनती भी करना चाहूँगा कि जब भी आपको हम ऐसी विनती करेंगे कि इसके बारे में विद्यार्थियों को आप ज़्यादा जानकारी दें, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप ना नहीं कहेंगे। मैं एक बार फिर आपका आभार व्यक्त करता हूँ।
थैंक यू सर। उस जाते जाते उसकी हसरत है जिसे दिल से भुला भी ना सकूं, और ढूंढने उसको चला हूँ जिसे पा भी ना सकूं। मेहरबा हो कि बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त,
क्या
मैं गया वक्त नहीं हूँ कि फिर आ भी ना सकूं।
क्या बात है।
थैंक यू सर।
क्या बात।